उनके लात को सहने वाला अपनी स्टेली साधारण दुबला पतला और इसको कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, स्टेली भी उठ करके चला गया। शाम को ही रामचंद्र जी राजभवन में पहुंचे, राम के पास में देखा जो राम पलंग पर बैठे हुए ऊह आह कर रहे। हनुमान जी वहां पर पूछा, प्रभु आपको ये क्या हो गया? तो तुम ही ने मारा और तुम ही पूछ रहे हो। तो हमने कब मारा? आ तो जो तेली को मारा वो हमको लगा। क्यों? उस समय वो राम राम कर रहा था। मेरा नाम और मैं एक हूं, अलग नहीं, इस चीज को विश्वास रखो। इसलिए जिस समय वो नाम कर रहा था मैं वहां पर था, उसके हृदय में था, उसके शरीर में था, इसलिए वो चोट हमको लगी उसको नहीं लगी। ओ इसीलिए तो वो गिरा नहीं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते छींकते पवित्र अपवित्र किसी भी अवस्था में, दिन में रात में, स्त्री पुरुष महिला कोई भी जाति का व्यक्ति हो, भगवान के नाम के समय में ये जाति इत्यादि का विचार नहीं होता। ये शरीर तो मट्टी है, ये कौन सी जाति? और आत्मा भगवान का अंश है, ये कौन सी जाति? ये हमारे कल्पना करके हम लोगों के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए ये सब वर्ण व्यवस्था थी, ये किसी प्रकार से सभी लोग हरिनाम करें। पीछे से वर्ण व्यवस्था में कुछ दोष आया और थोड़ा सा देख करके अभी सभी लोग इसके विरुद्ध ही लगे, उसको संस्कार करके उसमें जो दोष है दूर करके हम वर्णाश्रम को अपने भजन के अनुकूल बना सके। वर्णाश्रम का मूल था भगवान का भजन, कहीं भी हो, हमारे भारतवर्ष में था, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है। लड़ने वाले क्षत्रिय, जो साहित्य इत्यादि पढ़ने वाले ब्राह्मण, कलम के धनी बुद्धिजीवी लोग इसको ब्राह्मण, और नौकरी चाकरी करने वाले ये सब वैश्य हैं। हाँ, वाणिज्य करने वाले व्यवसाय बनिए हैं, ये बनिए हैं वैश्य हैं, और दूसरों के यहाँ नौकरी करने वाले, ये सब नौकरी करने वाले सभी शूद्र हैं। सर्वत्र ये वर्ण व्यवस्था, यहाँ पर नाम था, वैज्ञानिक पद्धति से ये सब बना हुआ था लोगों के कल, लोग इसको समझ नहीं सकते, विशेष करके आज भी। इसलिए पहले देखिए, ब्राह्मण भी एक शूद्र के लड़के को अपना भाई मानता था, प्रेम के साथ में उसे दूरी नहीं रखता था। हमने देखा हम लोगों के सामने भी, हम लोग जो चमार दुसार उनको चाचा जी कहते और अपने गोदी में लेकर के हम लोगों का पालन पोषण करता था, हल चलाता था। आज वो सब तक प्रेम कहाँ चला गया? और जितने भी हिंदू नीच वाले अब बौद्ध बन रहे हैं, कोई कुछ परस्पर प्रीति नहीं रही। इसलिए इसके मूल में था कल्याण की भावना, अब धीरे 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 हम लोग छोड़ करके कुछ भी नहीं। ये हिंदू लोग गोमांस नहीं खाते थे, मुसलमान लोग सुअर का मांस नहीं खाते थे, अब तो ये भी नहीं रहा। गोमांस और सुअर का मांस ये सब कुछ अब बाकी नहीं रहा। इस तरह से हम लोग धर्म से विपत्त में जा रहे हैं और दिन पर दिन देख रहे हैं, शिक्षित तो हो रहे हैं किंतु मार काट लूट पाट ये सब चल रहा है। इसलिए यदि हम कल्याण चाहते हैं, सुख और शांति जीवन में चाहते हैं, तो सहज रूप में भगवान का नाम का आश्रय करो। कलयुग में सबसे बड़ा श्रेष्ठ नाम है जिसको महामंत्र कहते हैं, वो हरे कृष्ण नाम है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम राम, इसको महामंत्र समझिए। यदि गुरु से विद्वत दीक्षा नहीं मिले तभी ये काम करेगा। भगवान इसकी व्यवस्था करके सदगुरु मिला करके अंत में शुद्ध आचरण करके भगवान के भजन में लगा देंगे। उल्टा नाम जपतक जगना जाना, उल्टा नाम करते हैं। वाल्मीकि जी कैसे बन गए? ब्रह्म के समान बन गए। अभी मीराबाई को देखो तो उनका नाम लेते लेते कैसी बन। तुलसीदास को देखो जो महामूर्ख और कैसे जगत के पूज्य बन गए। इसलिए नाम जगत का आधार है। कलयुग में नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने, नित्यानंद प्रभु जी ने समस्त जगत में ये नाम की महिमा बढ़ाई और सर्वत्र सब लोगों से मांगते थे भिक्षा। आप लोग एक बार कृष्ण कहिए यही हमको भिक्षा दी। चावल दाल तरकारी रुपया पैसा नहीं मांगते थे, उनको रुपये पैसे की जरूरत नहीं थी। यदि होती तो वो लोग बहुत से रुपये मांग करके खूब धनी हो जाते, धन सुख शांति नहीं दे। इसलिए हम लोगों को भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। महामंत्र कैसे करते हैं आप जरा कीर्तन कीजिए तो। लोग सभी चैतन्य महाप्रभु जी को जानते हैं। राधा जी का भाव संग लेकर के कृष्ण प्रेम देने के लिए इस जगत में अवतीर्ण हुए। उन्होंने नाम संकीर्तन का इतना प्रचार किया। उनके एक बड़े भैया थे, उनका नाम था विश्वरूप। महाप्रभु जी से कुछ बड़े थे। जब ये स्कूल में पढ़ते थे अद्वैताचार्य के पास ही मायापुर में, तो ये उनको बुलाने के लिए जाते थे। इनका नाम था निमाई और उनका नाम था विश्वरूप। निमाई अपने बड़े भैया को बुलाने जाते, मैया तुम्हें बुला रही है भोजन करने के लिए। और अद्वैताचार्य महाप्रभु का रूप देख करके, चैतन्य महाप्रभु का, निमाई का, इतना सुंदर बालक, मैं इतना वितराग संसार से त्यक्त, और मैंने इसका तरफ में देखा, हमारे चित्त को ये लुभा कैसे लेता है। उनके तरफ में एक तक अपर उनको देखते, और ये निमाई जो बालक उनके तरफ में देख करके थोड़ा सा मंद मुस्कान करता हुआ, हमको तुम पहचान नहीं रहे, हमको तुमने बुलाया, मैं तुम्हारे कहने से ही जगत में आया, तुलसी और पानी दे करके हमको बुलाया, आराधना की, सबसे बड़ी आराधना क्या है, भगवान को तुलसी देना, इसे जल्दी से जल्दी भगवान अपने को दे देते हैं, तो तुमने ऐसे किया और तुमको याद नहीं आ रही। पीछे से यही विश्वरूप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, उसमें बंगाल में लोग कोई गीता भागवत नहीं पढ़ते, और यदि पढ़ते तो सो हम करते, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, शिवो हम करते। दुर्गा जी की अष्टकाली जो भुजा है, भुजाए वाली जो काली, उनका भजन करते। खोपड़ी में, मनुष्य की खोपड़ी में मद ढाल करके मदिरा और पान करते, इसी को परम धर्म कहते थे। ये गीता की सुंदर व्याख्या करते इस स्वरूप। नवदीप को उन्होंने बदल दिया। इधर चैतन्य महाप्रभु जी के जब बड़े कुछ हुए, उन्होंने देखा कि इनकी मैया इनको विवाह करने के लिए और पिताजी बार बार कह रहे हैं। उन्होंने विवाह होने के पहले एक दिन घर से उठे और चले गए, और जाकर के आज ही के दिन उन्होंने संन्यास लिया था, मुंडन इत्यादि कर। आज वही पूर्णिमा है, इसको विश्वरूप भौर का दिन, बौद्धरूप पूर्णिमा कहते हैं। इसलिए हम लोग भी जितने ब्रह्मचारी साधु सन्यासी गौड़िया मठ के हैं, आज के दिन में 2 महीने के बाद में आज खौर कराए। 4 महीने का हमारा नियम है, ये 4 महीना तक खौर नहीं कराएंगे, नख नहीं काटेंगे, बैंगन, लौकी, परवल, टमाटर, गाजर, घिया ये नहीं लेंगे, मसूर की दाल तो लेते ही नहीं, उड़द की दाल भी नहीं लेंगे। ये सब नियम से और नियमित रूप में भगवान का भजन करेंगे, ये प्रतिज्ञा लेते हैं 4 महीने के लिए। प्राचीन काल में ही ऐसे होता, तो 4 महीने हम लोग केश नहीं कटाते, नख नहीं, और स्पेशल रूप में भगवान का भजन करते हैं। इसको कहते हैं चातुर्मासा या चातुर्मास्य। इसका अंतिम महीना होता है कार्तिक। इस महीने के बाद ही अब कार्तिक आएगा पूर्णिमा से। यदि इसने नहीं किया, किसी तरह से छूट गया, तो वो कार्तिक का महीना जरूर 1 महीना करना चाहिए। उसमें सरसों का तेल बची, लौकी नहीं लेंगे, कुछ अपने आराम की चीजें छोड़ देंगे। साधु संत लोग तो पलंग पर भी नहीं बैठते, गृहस्थ भक्त जो पालन करते हैं वो भी पलंग पर नहीं जाते, किसी तरह से पत्ते में लेते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाते, भोग विलास से दूर रह करके भगवान के लिए 1 महीना समय उनके लिए देते। इस तरह से भगवान को कुछ समय देते हैं, करते 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 अभ्यास हो जाने के बाद में ये कष्टदायक नहीं होती। आज विश्वरूप जी का ये संन्यास का दिन है, अब इसी दिन इनका जन्म है, तो वो विश्वरूप भी इन पर कृपा करें, और राधा कृष्ण भी कृपा करें, चैतन्य महाप्रभु और सब संत लोगों उन पर कृपा करें, इनको ब्रज की भक्ति हो, इन दोनों को, इनकी और इनकी पत्नी को और परिवार को भी, राधा कृष्ण में इनकी निष्ठा हो। कीर्तन भी इतना सुंदर किया, क्या कहे,
राधा मेरी स्वामिनी,
राधा मोरे स्वामी,
मैं राधे को दास,
आप जन्म जन्म
मुझे दीजिए।
तो जब वृंदावन में रहेंगे जन्म जन्म तो दूसरे का भजन करेंगे, राधा के एक ही भजन करेंगे। उन्होंने तो प्रतिज्ञा भी कर दी है, इसलिए आप लोग इस तरह से सभी लोग उनको आशीर्वाद करेंगे, राधा कृष्ण के चरणों में एकांतिक भक्ति हो और वो भी इसी तरह से लेकर के आगे बढ़े। भजन में हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, पंजाबी लोगों में तो विशेष करके प्याज जरूर खाते, इसको कोई बुरा चीज नहीं मानते हैं। फल सभी के घर में गाजर जैसे खाते हैं, फल खाते हैं वैसे खाते हैं, ये कोई बुरा चीज नहीं मानते। किंतु जब हम कसौटी पर कसते हैं तो इसमें तामसिक भाव, इसलिए बलवान भी होते हैं, हृष्ट पुष्ट लंबे चौड़े भी होते हैं, क्रोधी भी कभी कभी हो जाते हैं क्योंकि तामसिक गुण है ना। इसलिए भगवान के भजन करने के लिए इन चीजों को दूर करते है तो उन लोगों के लिए छोड़ना कठिन, किंतु क्या कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं, हम प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए इन चीजों को छोड़ करके किसी की निंदा करना चुगली करना इसको भी छोड़ना चाहिए और सत्य रूप में रह करके सादा जीवन रह करके भगवान का भजन करना चाहिए, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य। आज यही करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, आप सभी इन दोनों को आशीर्वाद करें। गौ प्रेमानंदे जय जय श्री राधे, उनको बुलाइए बातचीत करें।